उसी समय गोपाल भट्ट को भी महाप्रभु की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी को उनके चाचा महान सन्यासी प्रबोधानंद सरस्वती ने दीक्षा दी। गोपाल भट्ट गोस्वामी के माता पिता अत्यंत भाग्यशाली थे कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में सारा जीवन लगा दिया। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को वृंदावन जाने की अनुमति दे दी और महाप्रभु का चिंतन करते करते उन्होंने अपने प्राण त्यागे। जब भगवान चैतन्य से बाद में बताया गया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन गए और वहां श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी से मिले तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी को सलाह दी कि वे गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने छोटे भाई की तरह रखे और उनकी देखभाल करें। श्री सनातन गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति अपने अघात स्नेह के कारण हरि भक्ति विलास नामक वैष्णव स्मृति लिखकर उनके नाम से प्रकाशित की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी के आदेशानुसार वृंदावन के 7 प्रमुख अर्च विग्रहों में से राधा रमन विग्रह की स्थापना की। राधा रमन मंदिर के सेवायत पुरोहित गौड़िया संप्रदाय के हैं। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितमृत लिखने के पूर्व सारे वैष्णव की अनुमति प्राप्त की तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, किंतु ये अनुरोध किया कि उनके नाम का पुस्तक में उल्लेख न किया जाए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सतर्कता पूर्वक चैतन्य चरितमृत में एकाध स्थानों पर ही गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम उल्लेख किया है। श्री राजीव गोस्वामी ने अपने तत्व संदर्भ के प्रारंभ में लिखा है, दक्षिण भारत के एक भक्त ने जो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के घनिष्ठ मित्र थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, किंतु वो काल क्रमानुसार संकलित नहीं है। अतः मैं एक शूद्र जीव उस पुस्तक की घटनाओं को क्रमबद्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसके लिए मध्वाचार्य श्रीधर स्वामी रामानुजाचार्य तथा गुरु शिष्य परंपरा के अन्य वरिष्ठ वैष्णव के निर्देश की सहायता ले रहा हूँ। भागवत संदर्भ के प्रारंभ में ही श्री राजीव गोस्वामी ने ऐसी ही बात कही है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सत्क्रिया सार दीपिका पुस्तक लिखी, हरि भक्ति विलास का संपादन किया, षड संदर्भ ग्रंथ की भूमिका लिखी तथा कृष्ण का नाम रखकर भाष्य लिखा। उन्होंने वृंदावन में राधा रमन आर्च विग्रह की स्थापना की। गौर गुणदेश दीपिका में उल्लेख है कि कृष्ण लीला में उनका पहले का नाम अनंग मंजरी था, कभी कभी उन्हें गुण मंजरी का अवतार भी बताया जाता है। श्रीनिवास आचार्य तथा गोपीनाथ पुजारी उनके दो शिष्य थे। ओम ज्ञान तिमिरांतश्च ज्ञानांजनं शलाकया श्रुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो च कल्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च फलितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज विशेष दिन है, 6 गोस्वामियों में से एक श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है। तो श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि वैष्णव के लिए ये जो आविर्भाव और तिरुभाव है वो एक ही प्रकार का है। जब कोई वैष्णव इस भूतल पर अवतरित होता है तो सबसे अधिक आनंद पृथ्वी को होता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं, ठाकुर वैष्णव गण अवनीर सुसंपर, कि जो वैष्णव गण है, जो भगवान के महान भक्त है, वो पृथ्वी के महान संपदा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब भी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को संबोधित करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि मेरे दो रत्न हैं, और वो दो रत्न कौन है? रूप और सनातन। गोपाल भट्ट गोस्वामी को उन्होंने कहा था, पाए वो दुर्लभ रत्न रूप सनातन। तुम जब वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में मैंने पहले से दो रत्न रखे हैं तुम्हारे लिए, और वो रत्न कौन है? मूल्यवान रत्न श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। इसलिए वैष्णव का इस भूतल पर अवतरण होना ये पृथ्वी देवी को सर्वाधिक आनंद करने वाला क्षण होता है, क्योंकि जब वैष्णवगण चलते हैं, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में वर्णन आता है, वैष्णवगण इस पृथ्वी पर अपने चरण रखते हैं तो पृथ्वी माता गदगद होकर नृत्य करने लगती है, और जब वैष्णवगण ऊपर हाथ करते हुए नृत्य करते हैं हाँ तो देवतागण आनंदित हो जाते हैं। तो ऐसे वैष्णवों का आगमन और इस संसार से प्रस्थान भी दोनों ही आनंददायी हैं। और चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से या अपने जीवन से यह हमें सिखाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैष्णव का जन्म कृष्ण के जन्म के समान है, क्योंकि कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम। अब वो कहते हैं कि जो व्यक्ति ये जानता है मेरे दिव्य और जन्म और कर्म के बारे में, वही संसार में शरीर को त्यागता है तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो वैष्णव है उनका भी भौतिक जन्म नहीं है, अब उनका भी जन्म कैसे है? कृष्ण के समान आध्यात्मिक है, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम जन्म लेते हैं अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए, लेकिन वैष्णव का जन्म और भगवान का जन्म वो कर्म के द्वारा लिप्त नहीं है, कर्म आदि से क्या है? रहित है। इसलिए ऐसे आचार्यों का जो जीवन है हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि उनके द्वारा हमें भगवत अनुराग प्राप्त होता है। इसलिए जब माता देवहूति और कपिल देव हम जब अपनी माँ को शिक्षा देते हैं, बल्कि देवहूति क्रंदन करती है और पश्चाताप करते हुए रोती है कि कितना मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पास एक महान शुद्ध भक्त पति रूप में मुझे मिले थे और स्वयं भगवान मेरे पुत्र रूप में प्राप्त हुए, फिर भी मैं इतनी अभागिनी हूं और अपने इंद्रियों भोगों में इतनी आसक्त हूं कि मैं इसका लाभ नहीं उठा पाई। तो क्रंदन करते हुए देवहूति अपने पुत्र को अप्रोच करती है कपिल को, कपिल देव को, और फिर उनसे शिक्षा लेती है। तो कपिल देव उनको कहते हैं कि इस संसार में किसी व्यक्ति के प्रति आसक्त होना वो नरक का द्वार है, और किसी महान वैष्णव के प्रति आसक्ति मोक्ष द्वार अपावृतम, मोक्ष का जो द्वार है वो खुल जाता है यदि व्यक्ति थोड़ी भी किसी महान वैष्णव के प्रति अनुराग की भावना या आसक्ति की भावना अपने हृदय में उदित करता है। तो इस प्रकार से ऐसे जो वैष्णव आचार्य का ये जो उत्सव हम मनाते हैं विशेष रूप से इस्कॉन में, तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की हमारे लिए अमूल्य देन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उनके गुरु ने कहा था कि तुम तो इतने विद्वान हो हाँ, कि तुम क्या करो, इस परंपरा के आचार्यों के लिए जितने उत्सव आदि है उसके लिए ये निर्देशिका बनाओ, वैष्णव कैलेंडर कंपाइल करो। ये जो वैष्णव कैलेंडर है पंचिका, जिसको कहते पंचिका, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती की देन है, उन्होंने ये प्रदान किया। और विशेष विशेष तिथियां, फेस्टिवल्स, आविर्भाव, तिरुभाव हमें दिए हैं ताकि महान आचार्यों का हम अपने जीवन से गुणगान कर सके और अपने हृदय और मन से उनका स्मरण कर सके। तो ऐसे विशेष आचार्य हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। और जब इस तात्पर्य को मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। प्रभुपाद के तात्पर्य ऐसे हैं कि प्रभुपाद ने पूरे दो पेज में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का सारा जो चरित्र है वो पूर्ण रूपेण दे दिया। बल्कि जब कृष्णदास कविराज अपना ग्रंथ लिखने वाले थे, क्योंकि वृंदावन में प्रतिदिन गोविंद देव मंदिर में गौड़िया वैष्णव, विशेष रूप से हरिदास पंडित और बहुत सारे वैष्णव जो रूप गोस्वामी का विग्रह है गोविंद देव, उनके सामने रोज सुबह शाम चैतन्य महाप्रभु की चर्चा करते थे और सुना करते थे और विशेष रूप से चैतन्य भागवत का वर्णन होता था। तो जब वैष्णव को लगा कि चैतन्य भागवत में और भी लीलाएं हैं जो वर्णित नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि कौन ऐसा भक्त है जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किसी ग्रंथ में कर सकता है। तो सबने सोचा कि राधा कुंड के तट पर श्री कृष्णदास कविराज हैं, वो योग्यतम आचार्य हैं जो महाप्रभु के चरित्र का उचित रूप से वर्णन कर सकते हैं अपने लेखनी के द्वारा। तो सारे ब्रज के वैष्णवगण गौड़िया वैष्णव राधा कुंड के तट पर कृष्णदास कविराज को अप्रोच करते हैं विनम्रता से और उनको कहते हैं कि हे कृष्णदास, आपने तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा उनके कंठ में जो चैतन्य लीला का जो रत्न है वो आपने प्राप्त किया है, तो आप क्या करो, महाप्रभु की जो परवर्ती लीलाएं हैं उनका वर्णन अपने लेखनी से करो एक अद्भुत ग्रंथ के माध्यम से। तो कृष्णदास कविराज तो अति विनम्र है, जब वो अपना ग्रंथ लिखते हैं तो वो कहते हैं कि जगाय मदाय से भी मैं निम्न हूं, निम्न कोटि का हूं, मल में रहने वाला कीट से भी मैं तुच्छ हूं, मेरा नाम कोई लेता है तो उसके सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं, कैसे संभव है, उनका नाम तो कृष्णदास है, कृष्ण उनके नाम में है। तो देखा जाए ये वास्तव में गौड़िया वैष्णव की पहचान है। क्या पहचान है, उनका हृदय भगवत प्रेम से पूरित है लेकिन अपने आप को स्वाभाविक रूप से क्या मानते हैं, अति नीच, उन्नत हैया अपना के माने अधम। कृष्णदास कविराज कहते हैं जो महान भक्त है उसकी पहचान यही है कि अति उन्नत होकर भी सदैव अपने आप को नीच मानता है, वो दिखावा नहीं करता है, उसके हृदय की स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि वो ये विनम्रता का भाव उसके हृदय से, उसके आचरण से, उसके वाणी से क्या करता है, झलकता है या प्रकट होता है। तो ऐसे कृष्णदास कविराज ने कहा, मैं तो योग्य नहीं हूं लेकिन आप सब वैष्णव यदि मुझ पर दयाशील होंगे तो मैं वर्णन कर सकता हूं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का। फिर सारे वैष्णव ने उनको कृपा आशीर्वाद दिया और उन्होंने विशेष विशेष वैष्णवों के पास गए, किस लिए, और उनसे कृपा प्राप्त करने के लिए। तो उस समय वो गोपाल भट्ट गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी के पास गए और उनके पास जाकर कहा कि मैं नया ग्रंथ का संकलन या रचना करने जा रहा हूं, आप सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तीन के आशीर्वाद से कभी भी आध्यात्मिक कार्य में विघ्न नहीं आता। गुरु वैष्णव भगवान तीनेर कहते हैं कि गुरु का, वैष्णवों का और परम भगवान का, इन तीनों का आशीर्वाद हमें जरूरी है जिसके द्वारा आध्यात्मिक कार्य में कोई विघ्न आ नहीं सकता। तो ऐसे वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, उससे पहले लोकनाथ गोस्वामी के पास गए नरोत्तम दास ठाकुर के जो गुरु हैं और उन्होंने कहा कि मुझे आप आशीर्वाद दो, मैं ग्रंथ लिखने जा रहा हूं। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा मेरा पूरा आशीर्वाद है, पूरी कृपा है, लेकिन मेरा नाम उस ग्रंथ में नहीं आना चाहिए, इस कलयुग में क्या है, नाम बिना किछु नहीं का 14 भुवन बाजे, तो ये नाम किसका, या तो मेरा या तो कृष्ण का, नाम की चर्चा होनी चाहिए, मेरे या तो कृष्ण की, येने तेने प्रकार है ना, नाम सर्वोच्च है, तो निर्भर करता है उस व्यक्ति के मनोवृत्ति पर किसका नाम, मेरा नाम गुणगानित होना चाहिए या कृष्ण का नाम गुणगानित होना चाहिए। तो जैसे ही उनसे सुना लोकनाथ गोस्वामी से, तो कृष्णदास कविराज ने कहा कि मैं जरूर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास गए और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी वही कहा कि मेरा नाम आपके ग्रंथ में नहीं आना चाहिए, लेकिन बहुत सावधानी के साथ दो तीन स्थानों पर कृष्णदास कविराज ने वर्णन किया है ये गोपाल भट्ट गोस्वामी का, जिसमें एक स्थान में वो कहते हैं हाँ छह गुरु आमार, मेरे छह गुरु हैं, और कौन से गुरु हैं? ये छह गोस्वामी हैं, जिनमें गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने गुरु के रूप में अपने लेखनी में लिखते हैं कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में। और ये जो श्लोक है जिसमें वो वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु की जो सर्वोत्तम शाखा है उनमें से एक शाखा किसकी है? गोपाल भट्ट गोस्वामी की। वास्तव में ये गोस्वामी की ही देन है ये कृष्ण भावना, या ये गोस्वामियों की देन है ये वृंदावन और भक्ति से युक्त जो ग्रंथ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष विशेष महाप्रभु का ये गुण है, उन्होंने अपने संप्रदाय को आगे कंटिन्यूअसली करने के लिए है, और दूसरा खुद भगवत भक्ति का आस्वादन करने के लिए है। अब उन्होंने क्या किया, दूर दूर की यात्राएं की, और दूर दूर यात्राएं करके अलग अलग भक्तों को वहां से उठाया। जैसे चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले गए वृंदावन के लिए निकले थे, और वृंदावन जाते से वृंदावन जाना है मुझे कहां से, बंगाल से होते हुए जाना है, वो उनका बहाना था। वृंदावन जाने के लिए दूसरे भी रास्ते हैं, जल्दी पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बंगाल से जाऊंगा, और फिर बंगाल से होते हुए गंगा का दर्शन स्नान आदि करके बहाना बनाकर वो कहां पहुंचे, रामकेली, और रामकेली गांव में जाकर उन्होंने दो भक्तों को पकड़ा, और वो कौन थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। आश्वासित किया कि मेरे आंदोलन के लिए दो प्रमुख सेनापति हैं। ये सेनापति शब्द सबसे पहले महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को यूज किया है। उन्होंने कहा पश्चिम देश में मेरे आंदोलन का प्रचार करने के लिए ये दो सेनापति काफी हैं, रूप और सनातन, जो जाएंगे। तो महाप्रभु की यात्रा का उद्देश्य अलग अलग भक्तों को चूज करना है, पकड़ना है, और लाकर अपने आंदोलन की सेवा में लगाना है, जैसे प्रभुपाद किया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले दो गोस्वामी को उठाया, फिर वापस आते समय रघुनाथ दास गोस्वामी को शांतिपुर में पकड़ा, और रघुनाथ दास गोस्वामी तब से चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या हो गए, पागल हो गए। इतने पागल हो गए कि घर से भागते थे रात को, दिन में दोपहर को। उनकी मां ने कहा इसके हाथ पांव में बेड़िया डाल दो लोहे की, और इसको बांध के रखो। उनके पिता कहते हैं, गोवर्धन मजुमदार कहते हैं, इस संसार में हर एक व्यक्ति बंध जाता है जब उसका विवाह होता है, और दूसरा जब उसके पास धन होता है। ये रघुनाथ ऐसा है कि इसके पास इंद्र समान ऐश्वर्य, स्त्री अप्सरा सम, इसके पास इंद्र के समान ऐश्वर्य है, और इसकी जो पत्नी है अप्सराओं से भी सुंदर है, ये इसको नहीं मान पाए तो इस संसार की बाकी चीजें क्या मान सकती हैं। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी भी महाप्रभु के आंदोलन को ज्वाइन करते हैं। उससे पूर्व चैतन्य महाप्रभु एक और भक्त को ढूंढने के लिए वास्तव में दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं। चैतन्य चरितामृत में दक्षिण भारत की यात्रा का एक गुह्य कारण वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि महाप्रभु का एक बहाना था दक्षिण भारत में जाकर नाम आदि का प्रचार करना, लेकिन मूल कारण क्या था, एक भक्त को वहां से उठाना चाहते थे, और वो कौन थे, रामानंद राम। महाप्रभु कहते हैं दक्षिण भारत में मुझे एक ही चीज से आनंद मिला है उस यात्रा में, और वो क्या आनंद मुझे मिला है, रामानंद राय का संग ही मुझे आनंद प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन बना है। जब दक्षिण भारत की यात्रा में गया था और राजमुंद्री के नजदीक गोदावरी के तट पर रामानंद राय से मेरा आलापन हुआ था, भगवत भक्ति के विषयों पर चर्चा हुई थी, इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अलग अलग स्थानों में अलग अलग भक्तों को ले आते हैं और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिलते हैं, जिसका वर्णन चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में हमें प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ग्रहण किया और संन्यास ग्रहण फाल्गुन महीने में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए और फाल्गुन महीने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने दोल यात्रा का दर्शन किया और चैत्र मास में सार्वभौम पंडाचार्य का उद्धार किया और फिर जैसे वैशाख आया चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुझे अब दक्षिण भारत की यात्रा में जाना है। सारे भक्त रोने लगे, दुखी हो गए, अरे अभी अभी महाप्रभु का संग मिला है और इस संग से हम वंचित हो रहे हैं। तो तुरंत सार्वभौम पंडाचार्य गिड़गिड़ाए उनके चरणों में पड़े, कहा कि कुछ दिन तो रहो। तो महाप्रभु कहते ठीक है एक हफ्ता और रहता हूँ। सारो भट्टाचार्य ने पूरी सेवा की उनकी जगन्नाथपुरी में और फिर चैतन्य महाप्रभु वैशाख मास के आखिरी में दक्षिण भारत की यात्रा में निकलते हैं और दक्षिण भारत का भ्रमण करते करते कुरुक्षेत्र विशाखापट्टनम आदि से होते हुए गोदावरी अवोमिलम तिरुपति ये सब करते हुए चेन्नई आज के जो मॉडर्न सिटीज है वहां विग्रह पार्थ सारथी का दर्शन करते हुए चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम पहुंचते हैं। और कौन से दिन पहुंचते हैं? कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आगमन श्रीरंग क्षेत्र में हुआ था शयन आषाढ़ शुक्ला एकादशी जो अभी अभी बीती है। शयन एकादशी भगवान जिस दिन शयन करते हैं या चातुर्माश्य की शुरुआत होती है उस दिन चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर चैतन्य महाप्रभु ने कावेरी नदी में स्नान किया। ऐसे कहते हैं शास्त्र कोई व्यक्ति निरंतर कावेरी का जल पान करता है तो वो कालांतर में शुद्ध भक्त हो जाता है, उसका कृष्ण स्मरण अति तीव्र हो जाता है कावेरी का स्नान करने वाले जल पीने मात्र से। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु श्रीरंग क्षेत्र गए और वहां अद्भुत विग्रह है जिनका नाम है रंगनाथ। उन्होंने रंगनाथ का दर्शन किया तो कृष्णदास कविराज लिखते हैं कावेरी ते स्नान करे देखी रंगनाथ स्तुति प्रणति करे मानी कृतार्थ। चैतन्य महाप्रभु ने कावेरी में स्नान किया और अपने आप को कृतार्थ मानने लगे कि कितना मैं भाग्यशाली हूँ कि इस स्थान में आया कावेरी स्नान भगवान रंगनाथ का दर्शन किया और फिर चैतन्य महाप्रभु नृत्य करने लगे। इतना उदंड नृत्य किया कृष्णदास कविराज कहते हैं कि वहां जो प्रतिदिन ऐसी श्रीया थी जो रंगनाथ का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन उसी समय आती थी वो भी जब रंगनाथ का दर्शन करना भूल गए और निरंतर चैतन्य महाप्रभु का ये जो कीर्तन है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो महाप्रभु का दर्शन और चैतन्य महाप्रभु का नृत्य कीर्तन को वो लोग देखने लगे और सारे लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े हो गए स्तब्ध हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु का ये नृत्य देखने के लिए वहां के जो हेड पुजारी हैं जिनका नाम था वेंकट भट्ट वो भी वहां थे। उन्होंने देखा कि ये कैसा अद्भुत व्यक्ति है जो निरंतर भगवान का गुणगान कर रहा है नृत्य कर रहा है हरे नाम का उच्चारण कर रहा है जमीन पर लोटपोट हो रहा है। तो वो वेंकट भट्ट का आकर्षण चैतन्य महाप्रभु के प्रति हुआ और चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर उन्होंने कहा कि आप क्या करो आप ये आमंत्रण स्वीकार करो मेरा। बल्कि कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जब भगवान रंगनाथ को देखा तो देखने मात्र से जिस प्रकार से बहुत बड़ा तूफान आकर कोई लंबा वृक्ष गिर जाता है उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु 7 फुट के हैं इतने विशाल काय और वो उस वृक्ष की भांति रंगनाथ के सामने जोर से गिर पड़े और रंगनाथ को देखकर कहने लगे हे मेरे प्राणनाथ। और महाप्रभु निरंतर भगवान रंगनाथ को देखकर क्रंदन करने लगे। बल्कि कृष्णदास कविराज कहते हैं चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन अवधि में तीन ही स्थानों में सबसे ज्यादा रहे थे। एक तो 18 साल के लिए जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव्य किया और फिर वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु रहे, ये नवदीप में रहे। और तीसरा स्थान था वो था ये श्री रंग क्षेत्र, रंगनाथ स्थान में जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने 4 महीने के लिए निवास किया था। तो ये रंगनाथ चैतन्य महाप्रभु रुके थे दो चीजों के लिए। एक तो जनरली कहा जाता है कि दक्षिण भारत में सारे विष्णु विग्रह हैं, लेकिन भगवान रंगनाथ वास्तव में शास्त्र कहते हैं कि माधुर्य विग्रह हैं भगवान रंगनाथ। और रंगनाथ को कहा जाता है सूक्ष्म वासुदेव, कोई माधुर्य विग्रह है उसके लिए 3 कारण शास्त्र कहते हैं। एक तो वो विग्रह फ्लूट बजाने वाले होने चाहिए, और दूसरा अपने तिरछी नजर से किसको देखते रहते हैं, श्रीमती राधिका को या गोपिकाओं को, और तीसरी चीज है वो गौओं को चराने के लिए जाते हैं। तो ऐसे भगवान रंगनाथ ये विशेष विशेष विग्रह थे जिनके पास चैतन्य महाप्रभु रुके, और वो रंगनाथ विग्रह वास्तव में जितने ब्रह्मांड में विग्रह है उनके मूल है। सारे जो अर्चा विग्रह है वो उस विग्रह से प्रकाशित या विस्तारित होते हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड के सबसे पहले विग्रह है भगवान रंगनाथ। शास्त्र कहते हैं कि जब ब्रह्मा इस संसार में प्रकट हुए थे, और हम जानते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा को उनको ज्ञान दिया था, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भागवत के प्रथम स्कंध में आदि कवये के रूप में ब्रह्मा को संबोधित किया है, कि जो ब्रह्मा को भगवान ने ज्ञान प्रदान किया, लेकिन मधु और कैटर नाम के जो आसुर थे उन्होंने उनके ज्ञान को चुरा लिया। हाँ, कैसे संभव है, उनके ज्ञान को ही वेद आदि को उनसे चुरा लिया। फिर ब्रह्मा बहुत दुखी हो गए कि क्या करें, तो भगवान फिर हयग्रीव के रूप में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं और रीइंस्टॉल करते हैं उनका जो नॉलेज है। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे ही उनका ज्ञान इंस्टॉल कर दिया। अब ज्ञान तो आ गया लेकिन कोई अनुभूति नहीं थी, इंफॉर्मेशन हो सकता है लेकिन साक्षात्कार नहीं था, रियलाइजेशन नहीं था, अनुभूति नहीं थी उस ज्ञान की। तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, मुझे कैसे क्रिएशन आदि करनी है। तो ऐसे ब्रह्मा भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मैं कैसे क्रिएशन आदि करूं, सृष्टि आदि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान क्षीर सागर से इस रंगनाथ विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, और ये विग्रह पूर्ण शालिग्राम, वो विग्रह कैसे हैं, अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं, और एक हाथ उन्होंने अपना पिलो बनाया है, एक हाथ ऐसे घुटने के या थाई के ऊपर ऐसे रखा है लंबा, उस हाथ से भगवान ऐसे दर्शाते हैं कि मेरे चरण कमल वो दिखाते हैं, अपने चरण कमल दिखाते हैं। वो कहते हैं कि चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करो। तो ऐसे भगवान रंगनाथ उनके जो चरण है ईस्ट पूर्व की ओर है, और उनका मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर है। तो ये ब्रह्मा को ये विग्रह जब भगवान प्रकट हो गए थे और जो अनंत शेष पर लेटे हुए हैं, तो ब्रह्मा को उन्होंने ध्यान दिया, और क्या कितने रात्रि ज्ञान दिया, 5 रात्रि तक नॉलेज उनको दे दिया, और उसी को क्या कहते हैं, पंचरात्र। हम सुनते हैं ना पंचरात्र विधि बिना, कि पंचरात्रि आदि विधि आदि का पालन किए बिना जो भगवत भक्ति है वो अनुचित है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा उस उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, और वो वास्तव में ब्रह्मा के आराधनीय विग्रह हैं, ब्रह्मा ने उनकी सेवा आदि की थी। और वो विग्रह जब प्रकट हुए तो बाद में ब्रह्मा के बाद ब्रह्मा ने उनकी सेवा दक्ष प्रजापति को दी, उसके बाद मनु ने उनकी सेवा की, फिर इक्ष्वाकु ने उनकी सेवा की, उसके बाद पृथ्वी तल में अयोध्या में महाराज दशरथ उनकी आराधना करने लगे, और फिर भगवान राम के पास वो सेवा आ गई, भगवान राम रंगनाथ की सेवा कर रहे थे। और जब लंका पर विजय प्राप्त की और फिर सारे वानर सेना विभीषण आदि यहाँ अयोध्या आए, तो सबको कुछ ना कुछ दिया जा रहा था तोहफा कि आपने बहुत बड़े सेवा की। तो फिर हम विभीषण को पूछा कि आपको सेवा आपने इतनी की है, क्या आपको तो भगवान राम कहते हैं। हाँ, विभीषण कहते हैं कि आपका जो कुल धन है वो हमें प्रदान करो। और अयोध्या का कुल धन क्या था? भगवान रंगनाथ। वो रंगनाथ तो भगवान राम ने वो विग्रह, विशाल का विग्रह विभीषण को दिए, और विभीषण ने हनुमान की तरह अपने हाथ में उठाकर उनको लेके जा रहे थे लंका की ओर। फिर उसी समय एक महान भक्त थे धर्म वर्मा, जो सोच रहे थे कि वो विग्रह अयोध्या से मेरे पास आने चाहिए जिनकी मैं सेवा करूं और सारा जगत लाभान्वित हो। तो फिर विभीषण जब उस स्थान में आए कावेरी के तट पर, तो वहां एक तालाब है जिसका नाम है चंद्र पुष्करणी। तो वो चंद्र पुष्करणी के तट पर उन्होंने उस विग्रह को रखा और कुछ स्नान आदि के लिए गए, फिर से उस विग्रह को उठाने का प्रयास किया तो वो विग्रह वहां से उठ नहीं रहे थे। विभीषण को कहा मैं अभी लंका नहीं आऊंगा, यहाँ रहूंगा, लेकिन मेरा जो मुख है वो लंका की ओर होगा, दक्षिण की ओर हमेशा देखता रहूंगा और तुमसे मैं सेवा शाम के समय में स्वीकार करूंगा। तो ऐसे विग्रह श्री रंग में आते हैं और चैतन्य महाप्रभु विशेष उनका दर्शन करना चाहते थे। कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि ऐसा एक भी दिन नहीं था चार महीने में चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ का दर्शन करने ना गए हो, और जाकर प्रतिदिन उनके सामने नृत्य करते थे, हरि नाम का उच्चारण करते थे। तो ऐसे विग्रह की जो सेवा है, ये जो वेंकट भट्ट, जो गोपाल भट्ट के पिता है, वो किया करते थे। और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित किया और चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप मेरे घर में आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर में आइए और यहाँ चातुर्मास का समय बिताइए, ताकि मैं आपके संग से और आपके द्वारा वर्णित प्रश्न कथा से लाभान्वित हो सकता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने देखा ये वेंकट भट्ट का मेरे प्रति बहुत बड़ी श्रद्धा है, बहुत बड़ा अनुराग है, सेवा की इतनी बड़ी भावना है। तो चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर में गए और वहां चैतन्य महाप्रभु रहते थे। तार घर रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे, भट्ट संगे गोविला सुखे चारे मासे। तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर में रहे और चार महीने निरंतर कृष्ण कथा करते थे, और सबसे अधिक आनंदित अपने दिन चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट के यहाँ बिताए। वेंकट भट्ट के और दो भाई थे, एक थे त्रिमल भट्ट और दूसरे थे प्रबोधानंद सरस्वती। वास्तव में गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो आध्यात्मिक दीक्षा गुरु हैं, वो रामानुजा संप्रदाय के प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर हैं। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी उनसे दीक्षा आदि प्राप्त करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब तक उनके घर में रहे और उन्होंने प्रवेश किया, तो उसी समय ये गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटे से बालक थे, वो आकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ ही लिया जोर से, और उनके पिता ने फिर उन चरणों का अभिषेक किया। सबने जो चरणामृत है, पाद प्रक्षालक जो चरणामृत है, उसको पान किया, और गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु को पहली बार देखकर उनके प्रति इतने अधिक अनुरक्त हो गए कि निरंतर वो चैतन्य महाप्रभु के संग में रहा करते थे, और चैतन्य महाप्रभु को भी उनको गोद में बिठाते थे, कभी सामने बिठाकर उनसे वार्तालाप करते थे, और कभी कभी तत्व उपदेश भी किया करते थे इतने छोटे बालक को। महाप्रभु किसी को भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति दे सकते हैं, जैसे शिवानंद सेन के पुत्र थे कवि कर्णपुर, महाप्रभु पूछते थे उनको आपकी पत्नी गर्भवती है कब पुत्र को जन्म देगी, अभी सन्यासी का कोई काम नहीं है जाकर पूछना, लेकिन महाप्रभु हमेशा पूछते थे, जानते थे कि इनके द्वारा एक महान भगवत भक्त आने वाला है। जब एक कवि कर्णपुर का जन्म हुआ, महाप्रभु गए और अपने पांव का अंगूठा उनके मुंह में डाल दिया। वो छोटा सा बालक अंगूठा डाला तो देखा वो छोटा सा बच्चा महाप्रभु के ऊपर संस्कृत श्लोकों का उच्चारण कर रहा है और अद्भुत हो गए। इसलिए महाप्रभु के ऊपर चैतन्य महाप्रभु का बायोग्राफी उन्होंने लिखा है, चैतन्य चंद्रोदय नाटक। तो ऐसे ऐसे महाप्रभु किसी को भी अपने आध्यात्मिक शक्ति से शक्ति संपन्न कर सकते हैं। ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी सदैव उनके नजदीक रहा करते थे और प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट भोजन वो स्वीकार करते थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु उनके जो पिता थे वेंकट भट्ट उनसे हास परिहास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि उनके जो पिता हैं वो तो नारायण और लक्ष्मी की सेवा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे भट्ट तुमार लक्ष्मी ठाकुरानी कांत वक्ष स्थिता प्रति व्रता शिरोमणि। महाप्रभु मजाक मजाक में शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कोई बच्चा दवाई नहीं लेता तो माँ बात बात में उसको दवाई पिलाती है, उसे पता भी नहीं चलता, खेल खेल में। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने हास परिहास में बहुत बड़े सिद्धांत की शिक्षा दी। और महाप्रभु ने कहा उस वेंकट भट्ट को, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता को, कि ये तुम्हारी जो लक्ष्मी है ना, तुम नारायण की पूजा करते हो ना, उनकी जो पत्नी है वो लक्ष्मी ठाकुरानी, वो तो सदैव कांत वक्ष स्थिता अपने पति के वक्ष में रहती है। लक्ष्मी का निवास भगवान के यहाँ होता है, श्री वत्स जिसे कहते हैं। तो ऐसे वो सदैव हृदय पर निवास करती है। कहते हैं महाप्रभु की वो तो पतिव्रता है और पतिव्रता शिरोमणि, तो सर्वश्रेष्ठ पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है लक्ष्मी ठाकुरानी। हमारा ठाकुर कृष्ण गोप गोचारा सात्वी हया केने चाहे ताहर संग। लेकिन तुम्हारे जो पतिव्रता ठाकुरानी है, मेरे ठाकुर महाप्रभु के ठाकुर कौन है? कृष्ण है। और कृष्ण क्या कहते हैं? गोप है और गवे चराने वाले हैं। मेरे ठाकुर गवे चराते हैं, गोप है, उनका संग प्राप्त करने के लिए तुम्हारी जो लक्ष्मी है पतिव्रता वो भी इच्छा व्यक्त करती है। यही लागी सुख भोग छाड़े चिरकाल व्रत नियम करे तपार करे अपार। महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए नारायण की पत्नी लक्ष्मी वो सब सुख आदि वैकुंठ का छोड़कर ब्रज में श्रीमद स्थान में आकर क्या करती है? तपस्या करने लगी है। हाँ बताओ क्या कारण है? वेंकट भट्ट कहते हैं ये सब बातें मेरे समझ में नहीं आ रही। उन्होंने कहा वो तो एक ही तो स्वरूप है, इतना क्या है? चलो लक्ष्मी कृष्ण की ओर चले गए तो उससे क्या इतना फर्क पड़ता है। लेकिन महाप्रभु ये स्थापित करना चाहते हैं एकले ईश्वर कृष्ण या कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस बात को स्थापित करना चाहते हैं। कृष्ण सर्वोत्कृष्ट माधुर्य विग्रह है जिसकी स्थापना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मुझे तो इतना पता नहीं है, मैं तो यही कह सकता हूँ कि कृष्ण और नारायण में इतना कोई अंतर नहीं है, तो ठीक है। हाँ लक्ष्मी कृष्ण का स्पर्श करे तो उसमें क्या फर्क है? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो ये लक्ष्मी कभी भी कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाती, बल्कि श्रुतियों ने भी कृष्ण को प्राप्त किया, लेकिन किसके अनुगत होकर? गोपियों के अनुगत, सखीर अनुगत कर। कृष्ण प्राप्ति तो तभी संभव है भक्तों के अनुगत होकर भगवत भक्ति का पालन करना। तो यह लक्ष्मी किसी के अनुगत नहीं होना चाहती, वो वैकुंठ ईश्वरी का भाव रखना चाहती है, सारे सुख उपभोग रखना चाहती है, लेकिन ब्रज का आनंद लूटना चाहती है वो संभव नहीं है। और वो गोपियों के अनुगत नहीं होना चाहती, इसी कारण से लक्ष्मी हाँ कभी भी ब्रज में प्रवेश नहीं कर पाती। अब जो दिव्य सौभाग्य गोपियों को प्राप्त है वो दिव्य सौभाग्य लक्ष्मी ठाकुरानी को भी प्राप्त नहीं है। महाप्रभु कहते देखो हाँ सो माधुर्य करे सदा सर्व आकर्षण, मेरे कृष्ण का जो मधुरता इतना है कि वो सारे जगत सबको आकर्षित करता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जब तक कोई व्यक्ति गोपियों के अनुगत नहीं होता, ऐश्वर्य ज्ञान से रहित नहीं होता, तब तक वो वास्तव में वृंदावन के जो कृष्ण हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाता। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको वास्तव में कर्मण कर दिया। वहां चैतन्य महाप्रभु ने उनको ब्रज भक्ति में लगा दिया। और चैतन्य महाप्रभु जब वहां रहे तो चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी का विरह बहुत हो रहा था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से श्री रंगम में 3 विग्रह बनाए, इतने छोटे छोटे हैं, उनके भी आंखें हैं, नाक है, सब कुछ है, जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा। वो बिल्कुल ही साउथ इंडियन स्टाइल है, वो जगन्नाथ जी लगते नहीं है, वो ऐसे लगते कि कोई डॉल्स है। हाँ, जो बहुत सुंदर डॉल्स है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो विग्रह अपने हाथ से बनाए और गोपाल भट्ट गोस्वामी, वेंकट भट्ट आदि उनकी सेवा करते थे। तो ऐसे गोपाल निरंतर चैतन्य महाप्रभु के नजदीक रहते थे बचपन में। और फिर महाप्रभु को एक दिन ऐसे देख रहे थे, देखा कि ये वेश मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुंडित केश, सैफ्रॉन ड्रेस और ये सन्यासी वेश, इससे अच्छा तो नवदीप में महाप्रभु कैसे होंगे। उनको बहुत दुख लगा कि ये सन्यास वेश में मैं देख रहा हूँ, मैं तो नवदीप वेश में देखना चाह रहा था, उनकी नवदीप लीलाओं को स्मरण करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो ऐसे सोचते सोचते गोपाल भट्ट जो बालक थे वो सो गए। महाप्रभु ने समझ लिया इसको मेरा नवदीप रूप देखना है। तो अचानक चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आए और अपना नवदीप का जो रूप है, गौरांग या निमाय पंडित का रूप, गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिखाया। और गोपाल भट्ट गोस्वामी उठ जाते हैं डर के मारे कि मैंने ये क्या देखा, साथ में नित्यानंद, अद्वैता, गदाधर, श्रीवास, सारे वैष्णव भक्तों को देखा। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर चैतन्य महाप्रभु के पास जाते और देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको विशेष आदेश प्रदान करते हैं और चैतन्य महाप्रभु उस समय अपना श्याम सुंदर रूप प्रकट करते, जैसे ये निद्रा से उठते हैं अपना श्याम सुंदर रूप प्रकट करते हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे गोपाल, तुम जब अभी बड़े हो जाओगे तब तक, जब तक तुम्हारे माता पिता हैं उनकी सेवा करते रहना, और जब माता पिता शरीर त्यागेंगे तो कभी विवाह मत करना, और तीसरी चीज उनके शरीर त्यागने के उपरांत कहां दौड़ पड़ो, वृंदावन के लिए चले जाना। चैतन्य महाप्रभु का विशेष आदेश गोपाल भट्ट गोस्वामी को था। महाप्रभु ने कहा, गुना कहे आचिरे जाए बा वृंदावन, मेरी दुर्लभ रत्न रूप सनातन। महाप्रभु ने कहा तुरंत ही तुम वृंदावन चले जाओ, वहां दुर्लभ रत्न रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तुम्हें मिलेंगे और वो दोनों मेरे मन को जानने वाले हैं और मेरे मन में जो विचार हैं, भावनाएं हैं, वो अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने प्रचार के माध्यम से सारे जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे दो भक्तों के नजदीक जाओ और उनके नीचे, उनके पास रहकर मेरी सेवा निरंतर करते रहो। चैतन्य महाप्रभु गोपाल को ये आदेश देते हैं और चैतन्य महाप्रभु फिर श्रीरंगम को छोड़ते हैं। वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने रंग क्षेत्र को छोड़ा था तो सारे जो लोग हैं वो मूर्छित हो गए, बल्कि वेंकट भट्टा अपने दो भाइयों के गले में गला, हाथ में हाथ डालकर जोर जोर से रोने लगे कि कौन हमें फिर कीर्तन सुनाएगा, कौन हमें गोदावरी के तट पर ले जाएगा, कौन हमें कृष्ण कथा वर्णन, हमारे लिए कृष्ण कथा वर्णन करेगा, किसके लिए लाखों लाखों लोग फिर से रंगनाथ क्षेत्र में आएंगे दर्शन करने के लिए। तो ऐसा बहुत ही विरह उत्पन्न हो रहा था उन सबको। और चैतन्य महाप्रभु उनको छोड़ने से पहले गोपाल को आलिंगन करते हैं और कृष्णदास कविराज कहते हैं कि आपने नेत्रों से, भक्ति रत्नाकर में वर्णन आता है कि महाप्रभु अपने नेत्रों से उनका जो पूरा अंग है हम उसको भिगो देते हैं नेत्र जल से। और गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहते हैं, मैंने जो तुम्हें आदेश दिया है वो किसी के पास जाकर प्रकाशित मत करना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रंग क्षेत्र को छोड़ते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदेश देते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब 30 साल के हो गए तब उनके माता पिता आदि ने शरीर छोड़ा, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर वृंदावन के लिए निकल पड़े। वृंदावन के लिए जाने से पूर्व गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सारे शास्त्रों की शिक्षा अपने आध्यात्मिक दीक्षा गुरु प्रबोधानंद सरस्वती से प्राप्त की थी। वर्णन आता है कि उन्होंने सारे अलंकार, व्याकरण, वेदांत, काव्य, न्याय शास्त्र, पुराण, सारे जो वैष्णव ग्रंथ है उनमें इतने अधिक प्रवीण हो गए थे वहां रहते हुए। और फिर वो वृंदावन के लिए चल पड़े और वास्तव में हमारा संप्रदाय पर जो प्रभाव है गौड़िया संप्रदाय पर वो रामानुजाचार्य के संप्रदाय का है। एक बार भक्तिवर ठाकुर को पूछा कि ये गौड़िया संप्रदाय और रामानुजाचार्य संप्रदाय में क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है? तो भक्तिवर ठाकुर ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने तो भक्ति का मंदिर बनाया है, लेकिन उसका जो नींव है वो रामानुजा संप्रदाय की शिक्षा है। भक्तिवर ठाकुर कहते हैं, वो एक प्यार के कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमेरा मंदिर, महाप्रभु का जो भगवत भक्ति का अंतर्निहित प्रेम का मंदिर है, रामानुज संप्रदाय भक्ति स्वरूप। रामानुज संप्रदाय की जो शिक्षा हमारे आंदोलन में है वो वास्तव में इसकी क्या है, नियम है। इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर कहा करते थे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु या गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन पहुंचते हैं और वृंदावन पहुंचने के बाद वो दो महान भक्तों से मिलते हैं और वो कौन है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कहा था कि दक्षिण भारत से एक भक्त आएगा, उनको अपने छोटे भाई के समान ट्रीट करो, आप उनकी सेवा आदि करो। तो ये बेटी इंतजार कर रहे थे कब गोपाल भट्ट आएगा वृंदावन। तो जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को सबसे अधिक आनंद हो गया। हाँ, क्योंकि भक्तों की बढ़ोतरी होती है, हाँ, तो किसको आनंद होता है, भक्तों को आनंद होता है। तो ऐसे रूप सनातन को लगा कि अच्छा हुआ वृंदावन में हम दो चार ही भक्त हैं और एक गोस्वामी आ गए, चलो बहुत आनंदित हो गए। फिर उन्होंने तुरंत रूप गोस्वामी ने एक लेटर लिया, लेटर लिखा और एक व्यक्ति के पास भेज दिया कि जाओ जगन्नाथपुरी और वहां चैतन्य महाप्रभु को दे दो। चैतन्य महाप्रभु के लिए लेटर भेजा रूप गोस्वामी ने, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में चौथा गोपीनाथ मंदिर में बैठे थे गदाधर पंडित के साथ श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। जैसे वृंदावन का एक सेवक आया, कहा महाप्रभु आपके लिए लेटर भेजा है, पत्र है। किसके द्वारा, रूप गोस्वामी के द्वारा। महाप्रभु ने सबके सामने बोला, महाप्रभु को इतना आनंद हो गया, जो भी न्यूज वृंदावन से आते थे महाप्रभु को सबसे अच्छा ज्यादा आनंद होता था, क्योंकि यहाँ प्रचार करने के लिए कोई नहीं था, महाप्रभु ने रूप सनातन को भेजा था। फिर गोपाल भट्ट को अरेंज किया था, तो महाप्रभु ने पढ़ा, सबको पढ़ाया कि देखो गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां पहुंचा है। फिर महाप्रभु से रहा नहीं, महाप्रभु ने जितना हो सके गोपाल भट्ट गोस्वामी का गुणगान सारे भक्तों के समक्ष किया और सारे भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में सुनकर अत्यधिक आनंदित होते हैं। फिर सोचते महाप्रभु, ये गोपाल भट्ट से मेरा बड़ा प्रेम है, मैं कुछ ना कुछ गोपाल भट्ट के लिए भेजना चाहता हूँ यहाँ से। तुरंत महाप्रभु ने लेटर लिखा तुरंत और महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे कह देखी विचार की करी, पाठाई व कोन द्रव्य अपूर्व माधुरी। महाप्रभु ने सोचा कि मुझे कुछ भेजना चाहिए गोपाल के लिए, क्योंकि गोपाल बड़ा विशेष भक्त है, अब क्या भेजो, क्या द्रव्य भेजो गोपाल भट्ट के लिए। महाप्रभु फिर सोचते हैं, दरिद्र सन्यासी के छो नाही मोर धान, सबे डोरा छे मोर वसिते आसन। महाप्रभु कहने लगे कि मैं एक दरिद्र सन्यासी हूँ, सन्यासी के लिए अपने पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हम महाप्रभु का पास सोचते थे कि मेरा धन एक दंडा है और जल पात्र है। नित्यानंद प्रभु ने जब वो दंडा तोड़ा तो उन्होंने कहा, अरे नित्यानंदा, ये यही तो मेरा धन था, एक दंड, उसको भी तोड़ दिया तुमने, अभी मैं धन से रहित हो गया। और महाप्रभु कहते मैं तो दरिद्र हो गया हूँ, जब से इस नित्यानंद ने मेरा क्या तोड़ा है, दंड तोड़ा है। बल्कि महाप्रभु शिक्षा स्तुतम सुनाने से पहले जगन्नाथपुरी में उससे पहले एक श्लोक वर्णन करते थे। महाप्रभु कहा करते थे, दास करे वेतन मोरे देह प्रेम धन। महाप्रभु कहते, आजकल मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, बेकार घूम रहा हूं, मुझे कोई तो अपनी नौकरी दे दो, सेवा में लगाओ, लेकिन मैं वेतन चाहता हूं। हाँ, वेतन क्या चाहिए, प्रेम धन रूपी वेतन मुझे चाहिए, तभी मैं किसी के पास नौकरी करूंगा। तो उस धन की महाप्रभु अपेक्षा करते हैं। तो ऐसे महाप्रभु कहते हुए तो संन्यासी हूं, मेरे पास
लेकिन महाप्रभु को लगा दो चीजें मेरे पास और हैं, जो मैं रोज गंभीरा में बैठने के लिए जो आसन यूज करता हूँ व्यास आसन जैसे होता है वो है, और एक डोर है गले में महाप्रभु धारण करते थे, ये अपना बहिर्वस वस्त्र भी। तो ऐसे सोचा कि गोपाल के लिए दो चीजें भेजता हूँ। आज तक चैतन्य महाप्रभु ने किसी और के लिए कुछ और भेजा नहीं, ये विशेष गोपाल भट्ट से प्रीति था जो महाप्रभु उनके लिए एक विशेष दर्जा देना चाहते थे। आगे लोगों को समय उसको बताते हैं। तो महाप्रभु ने एक डोर भेजा और अपना बहिर्वास इंक्लोब और ये आसन भेजा बैठने के लिए। तो एक भक्त ले गया जगन्नाथपुरी और जाकर रूप गोस्वामी के पास महाप्रभु ने कहा था दे दो। तो उस समय गोविंद देव मंदिर में उस दिन एक ही साथ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बैठकर चर्चा कर रहे थे। उसी समय जगन्नाथपुरी से व्यक्ति पहुंचा कि ये महाप्रभु का पत्र है और ये वस्तुएं हैं। तो रूप सनातन इतने आनंदित होते हैं, अरे महाप्रभु का आसन, सनातन गोस्वामी आसन को उठा के छाती भी लगाते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं। रूप गोस्वामी सर में वो डोर लगा के बहिर्वास अपने सर में लगा के छाती में लगाकर दोनों आप मूर्छित होकर गिर पड़ते। फिर कोई तो उठाके उनको उठाता, फिर वो सारे वस्तुओं को लेकर गदगद होकर गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास पहुंचते हैं। और गोपाल भट्ट के पास जाकर उनको कहते हैं कि महाप्रभु ने आपके लिए विशेष ये भेंट दी है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का हृदय द्रवित हो जाता है, आनंदित होकर गोपाल भट्ट गोस्वामी उन वस्तुओं को स्वीकार करते हैं और थोड़ा सोचते हैं कि आसन भेजा है तो मुझे बैठना नहीं चाहिए इस पर, साक्षात महाप्रभु बैठते हैं। रूप गोस्वामी ने कहा नहीं, आपको शिक्षा उपदेश प्रदान करने के लिए इस आसन पर बैठना है। महाप्रभु चाहते हैं आप इस आसन पर बैठकर सारे जगत को उपदेश प्रदान करो, दीक्षा दिया करो। हाँ, तब से गोपाल भट्ट गोस्वामी उस आसन पर बैठने लगे और जो डोर था उसको प्रतिदिन आपके गले में डालते थे। आज भी आप जाते हो राधा रमन मंदिर में तो दिन साल में 6 बार इनका दर्शन होता है, जन्माष्टमी में, आज के दिन लास्ट ईयर में था वहां, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का वो जो आसन और वस्त्र आदि वो बाहर रखे थे जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको दिए थे, लगभग 450 साल हो गए हैं, आज तक वो चीजें वैसे की वैसे सुरक्षित हैं। तो विशेष दिन है जिनमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ आसन और वस्त्र दर्शन के लिए बिल्कुल बाहर रखते हैं, आपका हाथ ऐसे स्पर्श हो सके इतना नजदीक रखते हैं। तो ऐसे दोनों चीजों को लेकर गोपाल भट्ट गोस्वामी आनंदित होते हैं और फिर वो आगे शिक्षा और दीक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के आदेश को स्वीकार करते हैं। बल्कि चैतन्य महाप्रभु से वो एक ही बार मिले थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर से कभी महाप्रभु को नहीं मिले। गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत में मिले थे, उसके बाद महाप्रभु से मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन महाप्रभु के प्रति प्रेम और विरह की भावना इतनी अधिक थी कि कभी कभी रात्रि में गोपाल भट्ट उठकर क्रंदन करते थे, हा गौरांग हा गौरांग कहते हुए उच्चारण करते थे। फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु स्वप्न में आए और उन्होंने कहा हे गोपाल तुम उत्तर भारत की यात्रा करो, हाँ तुम्हारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति होगी। तो उत्तर भारत की यात्रा के लिए वो निकले गोपाल भट्ट गोस्वामी, वहां से वो सहारनपुर जाते हैं, हाँ जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम था देवबंद। वहां एक क्षत्रिय ब्राह्मण उनका स्वागत करते हैं और उनको अपने घर में आमंत्रित करके स्थान देते हैं। वो ब्राह्मण बहुत गोपाल भट्ट की सेवा करते हैं और गोपाल भट्ट को समय को आगे नेपाल के लिए जाना था, तो गोपाल भट्ट को समय उनको कहते हैं आपको एक पुत्र प्राप्ति होगी जो कृष्ण परायण होगा, कृष्ण का महान भक्त होगा, अच्छा भक्त होगा, ऐसा पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा, ऐसा बोल के वो निकल पड़े गोपाल भट्ट गोस्वामी। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जब नेपाल गए, गंडक की नदी जहां उगम उनका होता है वहां स्नान करने के लिए, और उस दिन स्नान करने के लिए उसके जल में उन्होंने प्रवेश किया और जल लेकर तरह से जल डाल रहे थे, तो कहते हैं कि एक शिला उनके हाथ में आती है। कुछ ग्रंथ में वर्णन आता है कि उन्होंने जैसे अपना जल पात्र डाला तो उसमें 11 शिलाएं आई और देखा अरे इतनी शिलाएं, वापस डाल दी, फिर से डाला, फिर से शिलाएं उन्हें प्राप्त की। लेकिन भक्ति रत्न काल में वर्णन आया है कि उनके हाथ में एक शिला आती है और विशेष शालिग्राम शिला थी, और वो शिला थी दामोदर शिला, जो कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। तो ऐसे दामोदर शिला और फिर और 11 शिलाओं को लेकर हम वापस आते हैं और बहुत ही आदर के साथ उनकी सेवा करते हैं। कौन से स्थान पर? निधि मठ के पीछे जहाँ राधा रमन टेम्पल है, वहां एक वृक्ष हुआ करता था, यमुना नदी वहां तक आती थी और एक जलाशय वहां था, बिल्कुल वहां वहां एक वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर वो सेवा करते थे अपने शालिग्राम शिलाओं की, और शिलाओं को ऊपर टांग के रखा करते थे। तो ऐसा प्रतिदिन वो सेवा में मग्न थे, और कभी कभी वो जाते थे रूप गोस्वामी के विग्रह की सेवा करने, गोविंद देव की और गोपीनाथ की सेवा करने जाते थे, मदन मोहन जो सनातन गोस्वामी हैं उनकी सेवा करने जाते थे। तीन विग्रह की जब वो सेवा करते थे तो ये भावना उनके हृदय में आ गई कि मेरे एक ऐसे विग्रह होने चाहिए जिनका मुख गोविंद देव के समान हो, जिनका वक्षस्थल गोपीनाथ के समान हो और जिनके चरण मदन मोहन के समान हो। तो उसके लिए कहा है गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन क्रमे तिनिर सुख वक्ष श्री चरण तिन प्रभु एकत्र दर्शन एक ठाई अच्छे परिपाटी पूर्वे चिंती दबोसाई। मतलब गोस्वामी ने सोचा कि मेरे ऐसे विग्रह होने चाहिए। अभी वो सोचने लगे शालिग्राम की सेवा कर रहा हूं जिनका कोई अवयव ही नहीं है, उनको कैसे उनका श्रृंगार आदि करूं। तो वर्णन आता है कि नरसिम्हा जो जयंती है उस दिन एक धनाढ्य व्यापारी आता है ब्रज में, आप सबने सुना है, और वो सारे ब्रज के जो महामहंत दंत हैं उनके मंदिरों में जाकर दान और वस्त्र आभूषण आदि दे रहा था। तो सब जगह दे रहा था, इनको भी देखे गया और इनको देखे गए तो ये सोचने लगे अब यह शालिग्राम शिला तो गोल मटोल है, उनको कहा ना अवयव ना हाथ ना पाव ना कुछ, उनको कैसे वस्त्र कुछ पहना भी नहीं सकते। लेकिन हृदय में ये तीव्र लालसा भावना थी भगवत विग्रह की आराधना सेवा पूजा करने की। तो ऐसे चिंतन करते करते उस वृक्ष के नीचे ही रात्रि में सो गए और ये तीव्र भावना थी, और उन्होंने ये सोचा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अरे ये नरसिम्हा ये पैसे निकल सकता है पूरा रूप लेकर किसे खम्भे से, तो मेरे शालिग्राम से क्यों नहीं बाहर आ सकता। ऐसा सोच के वो निद्रा सो गए, और सुबह जब उठे और फिर यमुना में जाते स्नान करके आते हैं, सोचते हैं पूर्व बार मैं अपने शालिग्राम की सेवा करता हूं अभी, और जैसे ही आपने क्योंकि वो तो बांध के रखते थे कपड़े में, कोई बैग तो नहीं था, जैसे झूला लटका था ना वैसे ही रखते थे ऐसे बांध के, और ऐसे हाथ डाल दिया, आज वो शालिग्राम हाथ में नहीं लग रहा था, आज देखा कुछ हाथ भी है चरण भी है डिफरेंट अलग अलग अंग भी है। गोपाल भट्ट सोचने लगे ये क्या हो गया, चल चल से उन्होंने खोला अपना वो झोला, बाहर ऐसे खोलते ही हाँ वो गदगद हो गए, देखा अरे मेरे ये प्राणनाथ मेरे लिए है शालिग्राम से प्रकट हो गए, बल्कि उस विग्रह की खासियत है उनके नाखून भी दर्शनीय है और उनका दांतुली दांत भी राधा रमन का दर्शनीय है। ऐसे विग्रह शालिग्राम पीछे से देखते हैं तो फ्लैट है बिल्कुल ही, लेकिन आगे बिल्कुल ही उनका त्रिभंग दलित और अद्भुत सौंदर्य से युक्त उनका स्वरूप है रूप है। तो ऐसे उन विग्रह को देखा तुरंत कहा रूप सनातन को बुलाओ, क्योंकि कृष्णदास कविराज कहते हैं रूप सनातन आलापन, भक्ति की चर्चा किससे मनोसुक्त करते थे भगवत चर्चा, तो उनके लिए दो डिवोटीज थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, महाप्रभु के लिए भी दो भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के पास स्वरूप दामोदर थे और और दूसरा दक्षिण भारत से उन्होंने जानबूझ के रामानंद राय को लाया। कहा रामानंद राय जैसा भक्त नहीं है, रामानंद राय आप अपना जो जॉब है उसको तिलांजलि दे दो, प्रताप रुद्र के वहां गवर्नर थे उसको छोड़ के आ जाना, आप दोनों जगन्नाथपुरी में रहेंगे और निरंतर कृष्ण कथा का आस्वादन करेंगे, ऐसे रामानंद राय को महाप्रभु ने कहा था। और रामानंद राय ने किया भी, रामानंद राय सब त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के संग में जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में उनका निवास था और महाप्रभु गंभीरा में निवास करते थे और निरंतर आपस में कृष्ण कथा आलापन करते थे। तो जैसे रूप सनातन को पता चला वो वहां कुछ हुआ है, उस किसके यहाँ गोपाल भट्ट के यहाँ दौड़ के गए और देखा अरे कि अद्भुत विग्रह, तो कहते हैं कि ये लोग सनातन ने मिलकर उनका नामकरण किया है, राधा रमन ये नाम दिया है, बल्कि श्रीमती राधा रानी प्रकट नहीं उनके साथ, जहां कृष्ण है वहां श्रीमती राधिका है, शक्तिमान के साथ क्या है सदैव शक्ति है। तो आज भी वहां रखा जाता है राधा रानी का मुकुट आदि राधा रमन के साथ, तो ऐसे विग्रह विशेष रूप से उनको प्राप्त होते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को, या उनके लिए भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो सोचा भी इनकी सेवा भी तो करनी है निरंतर, अकेले है, तो एक दिन वो जब यमुना स्नान करके आ रहे थे, देखा एक युवक बालक उनके वहां दरवाजे में बैठा हुआ है, पर्ण कुटी उन्होंने बनाई थी, फिर झोला वैसा ही रखते थे, राधा रमन का अल्टर झोला ही था, जब चाहे उनको ऐसे झुलाते रहते थे और उनके लिए गान करते थे कीर्तन आदि। आज भी जाओ, इसलिए राधा रमन म्यूजिक प्रिय है, संगीत प्रेमी भगवान है, उनको सदैव गुणगान पसंद है। जयदेव गोस्वामी का मंगल के दशावतार स्तोत्र आदि का निरंतर वहां एक अद्भुत वैष्णव है, गाते रहते हैं अपने मधुर स्वर में, तो ये झुलाते थे और कई सारे गीत गाते थे। तो देखा कि दरवाजे में ही एक युवक आके बैठा है और गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रवेश करने लगे, पूछा बालक कहां से, कहते मेरे पिता ने भेजा है। बल्कि जब सनात गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल की ओर जा रहे थे और सहारनपुर के उस गांव में ब्राह्मण के यहाँ रुके थे और उनको बोला था ना उन्होंने कि आपको एक भगवत अनुरागी पुत्र प्राप्त होगा, जैसे बोला था, तो उस ब्राह्मण ने बोला जो पहला पुत्र प्राप्त होगा उसको आपकी सेवा में भेज दूंगा, फर्स्ट इंस्टॉलेशन, क्या कहते हैं पहली पहली किस्त, आपके पास पहला पुत्र आपकी सेवा में। तो ये भेजा जिनका नाम था गोपीनाथ, गोपीनाथ दास, तो ये गोपीनाथ दास को भेजा, कहा कि गोपीनाथ दास आपको याद है आपने मेरे पिता को आशीर्वाद दिया था, उन्होंने आपकी सेवा में भेजा, अभी मुझे कुछ और पता नहीं है, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी सेवा में निरंतर हूं। तो निरंतर फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन की सेवा में उनको नियुक्त किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी काफी साल राधा कुंड के तट पर रहे और उन्होंने भगवत भजन राधा का भाव से भाव में किया राधा कुंड के तट पर। तो ऐसे बाद में कालांतर में जो गोपीनाथ दास है उन्होंने सोचा कि अब इनकी सेवा ड्यूटीज के आगे भी चलनी चाहिए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा था विवाह करो, उन्होंने कहा नहीं विवाह नहीं कर सकते हम। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनके छोटे भाई थे दामोदर उनको बुलाया और उनका जो विवाह थे फिर उनके जो आगे वंशज है वो अभी राधा दामोदर के राधा रमन की सेवा करते हैं और गौड़िया संप्रदाय की जो सेवा है वो आगे चलती है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बहुत प्रभावित थे राधा रमन के अर्चन से। प्रभुपाद कहा करते थे हमारे भक्तों को अर्चन कि जो डेटी वर्शिप के स्टैंडर्ड्स हैं वो सीखने हैं या जानने हैं समझने हैं, तो हमारे लिए आदर्श क्या है राधा रमन जो विग्रह की सेवा या वहां जो जिस प्रकार से सेवा चलती है उस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी निरंतर सेवा करते थे और फिर भी उनको गौरांग महाप्रभु का विरह होता था और जब सेवा करते थे राधा रमन की तो वो गौरांग का स्मरण होकर रोया करते थे, अश्रु धारा बहते थे। गौरांग महाप्रभु राधा रमन
क्या हो जाते थे, महाप्रभु के रूप में प्रकट होते थे। कहते हैं गोपाल प्रेमाधीन श्री राधारमान श्री गौर सुंदर मूर्ति हैलाशेक्षण, कि गौर गोपाल के प्रेम के अधीन है राधा रमन। इसलिए जब जब उनको महाप्रभु का विरह अत्यधिक होता था तो वही राधा रमन श्री गौर सुंदर मूर्ति हैलाशेक्षण, वही राधा रमन क्या बनते थे, श्री गौरांग महाप्रभु। इस प्रकार से ये भी कहते हैं आचार्यगण कि राधा रानी नहीं है, क्योंकि साक्षात चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी राधा रमन है। तो ऐसे राधा रमन विशेष विग्रह गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए प्रकट हुए थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के महान महान शिष्य हुए हैं, उनमें से एक थे श्रीनिवास आचार्य। महाप्रभु ने कहा था तुम्हारा ये जो शिष्य है वो गोस्वामियों की शिक्षा को लेकर पूरे जगत में फैलाएगा। उनका ही शिष्य था जिन्होंने गोस्वामी लिटरेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किया बंगाल और उड़ीसा आदि में। और एक उनका शिष्य हुआ जिनका नाम था हरिवंश। हरिवंश ऐसा शिष्य था वो कभी गोपाल भट्ट गोस्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करता था, ब्रजवासी शिष्य था। यह हरिवंश जब भी गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आता था और तांबुल, हाँ तांबुल आप गोविंद देव जाओगे जयपुर तो पुजारी आपको पान देते हैं तांबुल ऑफर होता है, तो भगवान के सारे प्रसाद खा सकते हैं वैष्णव, लेकिन तांबुल नहीं खाना है। तो ये भक्त था शिष्य उनका हरिवंश, ये तांबुल कहते राधा रानी का प्रसाद है। कुछ होते ना बड़े हट्टीले भक्त होते हैं, हाँ वो मानेंगे नहीं, अपनी स्टाइल से करेंगे। तो इन्होंने कहा राधा रानी का प्रसाद है, और राधा रानी का भूत किसी के ऊपर सवार होता है किसी की सुनता नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि राधा रानी का प्रसाद है तांबुल में खाऊंगा। और ऐसे खाता था तांबुल, और वो भी एकादशी के दिन। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के राधा रमन मंदिर में जाता था, चबाते चबाते पूरे होंठ लाल, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिखाता था और प्रणाम भी करता था, लगता था सारे बड़ा विनम्र है लेकिन अंदर बड़ा वो भाव है अपना स्वामित्व का भाव। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते थे कि वो कहा करते थे कि अरे प्रसाद अन्न सदा ग्राह्यम हरे एकादशी बिना, प्रसाद अन्न सदा ग्राह्यम, प्रसाद सब समय ले सकते हो लेकिन हरे एकादशी, हाँ जो माधव तिथि है एकादशी उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ तो ये नहीं मानता था, ये कहते थे ठीक है अगली एकादशी से नहीं। फिर अगली एकादशी आती थी, वो चबाते हुए फिर से उसका प्रवेश राधा रमन मंदिर में, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने हमें देखा गुस्सा आ गया। ऐसे कहते आचार्य टीका देते उस पर, कहते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वास्तव में जितने वैष्णव विधि विधान है उसके संकलन करता है। सनातन गोस्वामी के साथ वैष्णव स्मृति ग्रंथ हरि भक्ति विलास का संकलन ही दोनों ने किया है, गोपाल भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। तो उन्होंने सोचा मेरा ही शिष्य ऐसा कर रहा है, तो सबको शिक्षा देने के लिए अपने शिष्य को दंडित किया। उन्होंने कहा तुम इस मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, हाँ तो तुम्हें मैं त्याग देता हूँ। हाँ गुरु त्याग दे तो सबसे बड़ा आध्यात्मिक जीवन का विनाश है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ऐसे डिसाइपल को हरिवंश जिनका नाम था उनको त्याग देते हैं, और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो गए अपने विग्रह स्थापित कर दे। राधा वल्लभ आज भी है विग्रह है वहाँ, वैष्णव जाते दर्शन के लिए, बाकी बिहारी के साथ ही मंदिर है राधा वल्लभ, तो वहाँ विग्रह स्थापित किए, फिर उनकी सेवा अपने पुत्रों को दे दी और फिर जंगल में चले गए। फिर कुछ ऐसे दस्यु लुटेरे चोर आदि ने उनकी निर्मम हत्या कर डाली, उनका गला सर काट डाला और गंगा में फेंक दिया। उनका जो सर है वो गंगा में बह रहा था, और गोपाल भट्ट गोस्वामी उस सुबह सुबह केशीघाट स्नान करने के लिए गए थे, और उस समय देखा कि दूर से एक सर आ रहा है और वो राधे राधे कह रहा है, और राधे राधे का उच्चारण कर रहा है। उन्होंने सोचा अरे ये राधे राधे का उच्चारण कहाँ से सुनाई दे रहा है, दूर से देखा क्योंकि वो काफी बड़े भक्त थे
हरिवंश भी, तो लेकिन उनको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं मिल रहा था। हाँ, यश प्रसाद और भगवत प्रसाद, यश और प्रसाद ना गति, कोई गति नहीं है, तो उनको तो गति नहीं मिल रही थी आध्यात्मिक गति। हाँ, जिसके कारण वो समझ पाए, उनका सर उनको सोचा कि मैंने महान अपराध किया है, और वो उस सर आता है कहते हुए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास और बोलता है, प्रण आता है, तव पाद पद्मा में कैनु अपराध लंकित नारी दश राधार प्रसाद। कहते कि राधा रानी की भी कृपा नहीं हो रही है क्योंकि आपका आदेश का उल्लंघन किया, हाँ, आपकी कृपा का मैं अनादर किया। और फिर था गोपाल भट्ट गोस्वामी का हृदय द्रवित होता है और वो कहते कि मैंने सारे अपराध तुम्हारे क्षमा किए हैं, और उसी के सर के ऊपर अपने जो पाद पद्म है गोपाल भट्ट गोस्वामी रख देते हैं उस हरिवंश के सर के ऊपर, और फिर आध्यात्मिक गति उनको लाभ होती है। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी उन पर कृपा करते हैं, और कालांतर में गोपाल भट्ट गोस्वामी अपना देहत्याग आज के दिन वृंदावन में करते हैं। तो ऐसे विशेष आचार्य हैं, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी और उनके माता पिता ने अपना जीवन चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अर्पित किया था। तो यही प्रयास होना चाहिए ऐसे महान आचार्य के चरित्र का स्मरण करना चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए, और उनसे सदैव उनके चरणों में आध्यात्मिक जीवन में बल प्राप्ति के लिए, हम श्री प्रभुपाद गुरु आदि की सेवा के लिए बल प्राप्ति के लिए सदैव उनसे अनुकंपा की याचना करनी चाहिए। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी विशेष विशेष प्रिय आचार्य है श्री चैतन्य महाप्रभु को, और श्री प्रभुपाद भी निरंतर जाया करते थे वहाँ, और चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से उनको दक्षिण भारत में से चुन कर लाया था, जैसे जौहरी या किसी रत्न परखने वाला अलग अलग रत्न उठाता है, तो ये विशेष आंदोलन है जिसमें महाप्रभु ने अलग अलग रत्न को डाला और ये इतना सुंदर हो गया, और उनमें सर्वोत्तम रत्न कौन है, श्रील प्रभुपाद है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा मोर सेनापति भव। तो ऐसे गोस्वामियों ने वृंदावन को उजागर किया, लेकिन उसका प्रकाश तो वहां तक ही सीमित था, लेकिन उसका वास्तव में प्रकाश, ब्रज का प्रकाश पूरे विश्व में किसी ने आलोकित या प्रकाशमान किया है तो वो श्री प्रभुपाद है। इसलिए श्रीरंगम में अभी जो हेड पुजारी है उनको पूछा कि आप अगले जन्म में क्या चाहते हो, वो कहते हैं मैं इस्कॉन में जन्म लेना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं इस्कॉन में जन्म लेना, उनको कहा कि रंगनाथ जी आपको कहें कि आप कुछ मांगो आशीर्वाद, तो कहते हैं मैं इस्कॉन में जन्म लेना चाहता हूँ एक प्रचारक के रूप में, और श्रीपद रामानुजाचार्य और आचार्य की जो महिमा और शिक्षा है उसको सारे जगत में क्या करना चाहता हूँ, वितरित या फैलाना चाहता हूँ। तो ये विशेष आंदोलन है श्रील प्रभुपाद का, हम भी अत्यधिक सौभाग्यशाली है इस आंदोलन में भाग लेने का मौका मिला है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुवाकृति महामहोत्सव के समवेत गौर भक्त वृंद के पिता गौर प्रेमानंद जी को।